आपसे कहने का मतलब है कि प्रारब्ध क्या होता है, संस्कार क्या होते हैं, वर्तमान कर्म क्या है, ये इन सबका आपस में कोई इंटरकनेक्शन है, यही तो जानना चाहते हैं। जो प्रारब्ध है इस देह का, जब जन्म होता है तो इस देह को एक आयु दी जाती है, किसी की 10 वर्ष है, किसी की 50 वर्ष है, किसी की 80 वर्ष है, एक पीरियड उसको मिलता है। उस पीरियड में इस देह के द्वारा क्या होना है और इस देह के द्वारा जीव ने क्या भोगना है, सुख रूप में, दुख रूप में, सक्सेस के रूप में, फेलियर के रूप में, जो भी इसकी एक्टिविटी होती हैं, जो भी घटनाक्रम इसके देह, इसकी देह के साथ संसार में घटता है, ये सत्पुरुष कहते हैं ये प्रारब्ध के अधीन है। आपके अनंत जन्म हो चुके, अनंत काल तक आप जीवन जीते रहे, हर कर्म का फल आप वहां नहीं भोग पाए, तो उसमें से कुछ अंश वर्तमान जन्म में आपको भोगने को मिलता है। इसको प्रारब्ध कहते हैं। और जो सांसारिक मनुष्य है वो मोटे रूप में इसको भाग्य करके कह देता है, लेकिन फिर भी उसको भाग्य पर विश्वास नहीं होता, इसलिए कभी जन्म पत्री दिखाता है, कभी किसी के आगे प्रार्थना करता है कि मेरा भाग्य बदल दो, मेरा काम बिगड़ रहा है उसको बना दो। अर्थात वो इस कोशिश में लगा रहता है कि जो इस देह के द्वारा मैंने भोगना है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए लोग देखा होगा ज्योतिषों के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, मौलवियों के पास जाते हैं, और यही उनके अंदर मन में एक आशा लगी रहती है, ये मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, जितना भी है, ये देवी दर्शन के लिए जाते हैं और बहुत से क्रियाकलाप करते हैं, तो इसी आशा में कि मेरी कोशिश से मेरा भाग्य, एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ यदि हम सत्पुरुषों की बात देखें, शास्त्रों की बात देखें, तो वहां तो महाराज जी की वाणी भी बड़ा स्पष्ट कर रही है कि जो हो ना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके तिल भर तिस फरमाही। जो कुछ भी तेरे साथ ये घटनाक्रम संसार करके, देह करके घट रहा है, ये प्रभु आज्ञा में घटित हो रहा है। तो यदि जो हो रहा है प्रभु आज्ञा में घटित हो रहा है, इसका मतलब मेरे कर्म का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, मेरे कर्म का कि क्या मतलब बनता है। यदि मेरे कर्म का कोई अर्थ है तो ये वाणी गलत सिद्ध हो जाती है। आप खुद विचार करके देखो, यदि आपके करने का कुछ भी फर्क पड़ता है संसार पे, या मैं बदल सकता हूं कर्म फल को या कर्म को, तो फिर इस वाणी का क्या अर्थ रह जाता है। जो होना सो हो रहा प्रभु की आज्ञा मानी, इसका क्या मतलब है? वाणी में कई जगह आया है भावी की बात आती है, सारा चक्र जो है वो भावी के अनुसार चल रहा है, केवल इस देह का नहीं पूरी सृष्टि का चक्र, पूरी सृष्टि का चक्र भावी के अनुसार चल रहा है। देश के देश गुलाम हो रहे हैं, देश के देश आजाद हो रहे हैं, इतनी दुनिया मारी जा रही है, इतनी दुनिया पैदा हो रही है। हम तो हर चीज में कारणकर्ता मनुष्य को ही जानते हैं, लेकिन यदि वाणी पढ़ें, शास्त्रों को पढ़ें, वहां कुछ दूसरी बात ही कह रहे हैं। इतने इतने बड़े भूचाल आ जाते हैं, इतने लोगों का सर्वनाश हो जाता है, तो वहां तो हम कहते हैं भैया जीव के पाप उदय हो गए, इसलिए प्रकृति जो है दंड दे रही है उनको। तरह तरह से बातें हम करते हैं, लेकिन निश्चय किसी बात पर नहीं होता। हम एक वहम में, एक संशय में खड़े रहते हैं, पूरा जन्म बीत जाता है इस बात का निर्णय हम नहीं करते। और गीता में भी आया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृत देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानी माया। सारे प्राणियों का जो ईश्वर है, जो मालिक है, मैं प्राणी हूं, उसको प्राणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेरा जो जीवन है, शारीरिक जीवन है, ये प्राण पर आधारित है। प्राण रुक जाए तो जीवन खत्म हो जाएगा, इसलिए उसको प्राणी कहा जाता है। सारे प्राणियों का जो ईश्वर है, जो मालिक है, हृत देशे अर्जुन तिष्ठति, वो उनके अंदर ही विद्यमान है। तो कैसी अजीब सी बात है, तो हम पता नहीं ईश्वर को कहां समझते हैं, लेकिन साफ साफ गीता कह रही है कि मेरा जो मालिक ईश्वर है, मालिक क्यों, मेरे प्राणों का मालिक ईश्वर, वही प्राणों को इस देह में भेजता है, इसलिए वही इस देह का संचालन करता है। तो वो ईश्वर इस देह के अंदर ही विद्यमान है, और कर क्या रहा है वो अंदर बैठा बैठा, भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। इस यंत्र रूपी शरीर में स्थित प्राणियों को, इस यंत्र रूपी शरीर में स्थित प्राणियों को वो अपनी माया से उनके भाग्य अनुसार, उनके प्राद अनुसार संसार में घुमाता है। महाराज जी की इस वाणी के दोहे में और गीता के इस श्लोक में कोई अंतर है? शब्दों का बस हेर फेर है, बात एक ही, जो होना सो हो रहा प्रभु की आज्ञा माही, यही तो बात है कि अंतर्यामी प्रभु इस देह को संसार में घुमा रहा है अपनी माया शक्ति से, इस देह के प्रारंभ के अनुसार जो भी ईश्वर ने पैकेज इस देह को दिया है कर्म करने के लिए, कर्म कर्मफल भोगने के लिए। तो ये तो सब कुछ आपकी देह के साथ होगा, लेकिन एक संस्कार की बात भी आती है। तो महाजी कहते हैं प्रेमी संस्कार कैसे बनते हैं, एक कर्म को जब बार बार आप करते हो तो उसका एक इंप्रेशन जो है मन के अंदर वो बन जाता है, एक ट्रैक मन के अंदर बन जाता है कि आप यदि 100 बार झूठ बोलो तो शुरू शुरू में आपको झूठ बोलने में ध्यान रखना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, आपको ध्यान आएगा देखो मैंने झूठ बोल दिया, लेकिन 100 बार के बाद आप 101वां बोलोगे या आदत पड़ जाएगी झूठ बोलने की, उसके बाद झूठ बोलोगे तो आपको होश ही नहीं आएगा कि मैं झूठ बोल रहा, वो आपका स्वभाव बन गया, वो आपका संस्कार बन गया। तो रिपीटेडली जो कर्म हम पास में करते चले आए हैं वो संस्कार हमारे मन के अंदर सारे
मौजूद हैं उन संस्कारों के अनुसार मेरा स्वभाव भी बना हुआ है। और ये जो संस्कार और स्वभाव हैं, महा जी कहते हैं प्रेमी यदि मनुष्य कोशिश करे तो इनको आप बदल भी सकता है। प्रारब्ध को बदलने की बात कहीं नहीं लिखी हुई, किसी भी शास्त्र में मैंने आज तक नहीं पढ़ा कि कोई मनुष्य चाहे तो प्रारब्ध बदल सकता है। यहां तक कि जो गुरु है, जो ब्रह्म ऋषि है, जो अवतार है, उनकी देह से भी जो क्रियाएं होती हैं, बड़े बड़े कर्म करते हैं, उसको भी उनकी देह की प्रारब्ध लीला ही कहा जाता है। इसीलिए जिसको आत्मीय अवस्था महा जी कहते थे, जिसको समतावस्था कहते थे, और जिसको ब्रह्म अवस्था कहते हैं या मोक्ष अवस्था कहते हैं, उस अवस्था की प्राप्ति के पश्चात भी ये देह गिरती नहीं है। तब तक नहीं गिरती जब तक इस देह का प्रारब्ध पूरा नहीं होता। तो फिर सत्पुरुष में और मुझ में अंतर क्या है? सत्पुरुष में और मुझ में बस एक अंतर है कि जैसा गीता कह रही है, इस यंत्र रूपी देह में स्थित प्राणियों को, मैं प्राणी हूं जिसको जीव कहते हैं, और मैं इस देह में स्थित हूं, लेकिन आज तक इतना जीवन व्यतीत किया, मैंने गीता की ये बात या शास्त्र की ये बात सीखी ही नहीं कि ये देह मेरे लिए यंत्र की तरह से है। इस यंत्र रूपी देह में स्थित प्राणियों की बात हो रही है। देह नहीं भोगती है, प्राणी भोगता है देह के द्वारा। तो इस एक गलती के कारण जो प्रारब्ध कर्म हो रहे हैं उसका कर्ता मैं बन जाता हूं कि मैं कर रहा हूं। तो मैं देह हूं तो देह से कर्म हो रहे हैं, देह प्रारब्ध के अधीन है। जब आप देह समझ रहे हो तो आप कर रहे हैं। इसलिए महाजन का प्रेमी, जब महाजी से पूछा गया, महाजी ऐसा कहा जाता है कि इस देह से कर्म प्रारब्ध के अनुसार होते हैं और इस प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर इस देह से कर्म करवाता है, परंतु फिर हमको सजा क्यों मिलती है? जब ईश्वर करवाता है तो ईश्वर भोगे। तो महाजी एक सरल सा उत्तर देते हैं, ओ प्रेमी जब तक तू अपने आप को कर्ता समझ रहा है तब तक तू ही भोगेगा। कर्ता ना होते हुए भी मैं अपने आप को समझ रहा हूं कर्ता, इसीलिए इस एक गलती की सजा मुझको जीवन भर मिलती है और पाप की कमाई करके संसार से विदा होता है इस एक भूल के कारण। इसीलिए मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या बनाया गया? महाजी की वाणी क्या बता रही? मनुष्य जन्म किस वास्ते मिला है? ईश्वर प्राप्ति। मनुष्य जन्म सफल होवे जब प्रभु दाता चित्त आए, तेरे चित्त में प्रभु बस जाए कि प्रभु ही सब कुछ। प्रभु के सिमरन कार में ये दुर्लभ जीवन था, ये दुर्लभ मानव जन्म तुझको इस वास्ते मिला प्रभु प्राप्ति के लिए। और प्रभु प्राप्ति का एक ही मतलब होता है, इस मोह से 100% मुक्त होने के लिए कि मैं देह हूं, इसी का ही दूसरा मतलब होता है प्रभु प्राप्ति। जो जीव इस भाव से मुक्त हो जाएगा कि मैं देह हूं, तो वो अंदर जो ईश्वर सत्ता है उस ईश्वरीय भाव में वो लीन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस स्लो प्रोसेस है, लेकिन चलता यही है। जैसे जैसे आप जो है वो आपकी बुद्धि में ये विवेक आता है, ये शास्त्रों का मर्म आपकी बुद्धि में बैठ जाता है, शास्त्रों के निर्णय आप उनको जब विश्वास करके उसके अनुसार सोचने लगते हैं, तो फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका पहले देह का कुछ अहंकार कम होगा, आप कर्म करते वक्त होश में रहोगे, आपके कर्मों में कुछ निर्माणता नजर आएगी। तो 5 विकार के वशीभूत रहते उसके मुकाबले में आप जो है वो आपके अंदर एक जिसे कहते हैं उदासीन भाव जिसको महाजी कहते थे, उदासीन नहीं, उदासीन भाव, न्यूट्रल, कि आपके काम बन रहे हैं बिगड़ रहे हैं, आपको ज्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं, बड़ा कम परेशान कर रहे हैं, तो आपकी धीरे धीरे करने वो जो उदासीनता है वो आती रहती है, सुख दुख में आपके अंदर संभाव धीरे धीरे गहरा होने लगता है, उसी रेशियो में, जिस रेशियो में अंदर ईश्वर के साथ आपका मेल गहरा होता है, ईश्वर के प्रति विश्वास गहरा होता है, ईश्वर के प्रति सिमरन गहरा होता है, वैसे वैसे ये बाहर की दुनिया में आपके धीरे धीरे बदलाव आ जाता है। प्रारब्ध में बदलाव फिर भी नहीं आता, घटनाक्रम वैसा ही घटेगा जीवन में जैसा कि घटना है। अब महाराज जी का बचपन तो आपने पढ़ा है, सुना है, कहीं आपको नजर आता है कि महाराज जी ने कोई पाप किया? जिसको 3 वर्ष की आयु से ईश्वर का बोध हो, 3 वर्ष की आयु से, तो आपको ऐसा लगता है कि वो पाप करेगा? धोखे में कोई हो जाए गलती तो हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, प्रारब्ध के वशीभूत होकर भी हो सकती है, लेकिन जानकर करेगा क्या वो? कोई ऐसा संभव नहीं, कम से कम सत्पुरुषों के बारे में तो हम ऐसा एज्यूम कर ही सकते हैं। लेकिन फिर भी सारी संगत तैयार हो गई, आश्रम तैयार हो गया गंगोत्रिया का, नया नया आश्रम बना था, शायद एक ही सब या 2 सम्मेलन ही हो पाए थे वहां पर, और पार्टीशन हो गया। कितनी तकलीफ उठा के महाजी को आना पड़ा होगा विचार करो, सारी संगत तहस नहस हो गई, कितने शिष्य कितनी मेहनत से बनाए होंगे महाराज ने, क्या इलाका था जहां ना कोई बस सर्विस होती थी, ज्यादातर भ्रमण लोग पैदल ही किया करते, तो आप बताइए कि ऐसा सत्पुरुष जिसने कोई पाप ही नहीं किया लेकिन उसके देह के साथ क्या घटनाक्रम बीत रहा। और भारत में आके आपने देखा ही कि कैसे संगत दोबारा बनी, कैसे आश्रम बने और क्या क्या हुआ। तो कहने का मतलब ये है, वर्तमान जन्म के आप अच्छे से अच्छे कर्म भी आपके हो जाएं, लेकिन जो भाग्य का दुख है तब भी आपको भोगना ही पड़ता है। और यदि इतिहास देखें तो 5 पांडवों का इतिहास देख लिए, कृष्ण तो उनके घर के आदमी थे ना, उनके रिश्तेदार, लेकिन कृष्ण उनको दुख से बचा सके थे, अर्जुन कंफ्यूजन में था कि मैं यदि युद्ध करूंगा ये सारे मारे जाएंगे, इतनी लाखों औरतें ये विधवा हो जाएंगी, जो विधवा हो जाएंगी पुरुष कम हो जाएंगे, विधवाएं औरतें ज्यादा होंगी तो वर्ण संकर पैदा होंगे, तो सारा जो है ये बिगड़ जाएगा समाज। तो भविष्य की सोच उसके अंदर थी, वो देख रहा था क्या होने वाला है आगे चलकर, यदि युद्ध हुआ तो उसने यही तो सोचा कि मैं राजपाट के लिए युद्ध कर रहा हूं, क्या करना है मैंने राज, उसको होश थी, इसलिए मैं तो संन्यास लेके ईश्वर भक्ति करूंगा, लोक कल्याण करूंगा, क्या जरूरत है मुझको गद्दी बैठने की। उसके दिमाग में ये विचार घूम रहे थे, उसने गांडीव रख लिया। अब कृष्ण उसको क्या कह रहे हैं, तो इतिहास से हमने कुछ तो सीखना होता है, तो कृष्ण उससे क्या कह रहे हैं कि अर्जुन तेरे हाथ में यह नहीं है कि तू युद्ध करे या ना करे, ये चॉइस तुझको नहीं दी गई है, ये युद्ध तो पहले ही हो चुका है, इसका मतलब ये युद्ध निर्धारित है, जितने जो सामने दिख रहे हैं ये इनका प्रारब्ध ऐसा है कि ये युद्ध हो चुका है, अर्थात ये होना ही है। और हुआ, युद्ध हुआ, लेकिन कृष्ण का ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन में क्या चेंज आई? विचार तो हमने ये करना है कि जब प्रारब्ध जैसा था उसको तो अर्जुन बदल नहीं सका, ना कृष्ण बदल सके, वो घटनाक्रम वैसा ही घटा जैसा घटना था, लेकिन फिर भी अर्जुन में क्या चेंज आ गई? पहले यदि वो राजा बनकर युद्ध करता तो जितनों को मारता या जो कुछ भी हिंसा होती उसका कर्मफल पता नहीं कितने जन्म भोगना पड़ता उसको, भाई वर्तमान तो प्रारब्ध के कारण करना पड़ रहा है। लेकिन यदि आपको प्रारब्ध का होश नहीं, आप इच्छा करके कर रहे हो, मात्र तो नहीं है कि आपके संस्कारों के अनुसार, आपके स्वभाव के अनुसार आपके अंदर इच्छाएं पैदा हो रही हैं, और उस इच्छा के वशीभूत होकर आप वही कर्म कर रहे हो जो प्रारब्ध करवा रहा है आपको, इसका परिणाम क्या होता है? जो कुछ भी कर्म आप कर रहे हो इसका फल फिर आप आगे भोगोगे। वही महाराज जी कह रहे हैं प्रेमी, जब तक तू अपने आप को कर्ता समझ रहा है तब तक भोगता भी तू ही है। तो इसका मतलब एक ही हुआ कि अध्यात्म विद्या क्या है, अध्यात्म मार्ग क्या है, कि मैंने इस कर्तापन से मुक्त होना है, संसार से मुक्त नहीं होना, देह से मुक्त नहीं होना, मैंने कर्तापन से मुक्त होना है, मैंने ये जानना है कि वास्तव में मैं कर्ता हूं ही नहीं। इसीलिए वाणी आपको याद दिला रही है, देखो सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो यही सार है। बस ये ज्ञान में स्थिति है, ये ईश्वर में स्थिति है कि जिस दिन तू अपने आप को अकर्ता समझ जाता है उस दिन तू ईश्वर बन जाता है। जी से तू ईश्वर बन जाता है जिस दिन तू ये समझ लेता है कि मैं वास्तव में अकर्ता, अर्थात तेरे अंदर कर्तापन खत्म होता है। इसी को मोक्ष कहते हैं, इसी को कल्याण कहते हैं, और यही निर्वाण अवस्था है, यही समता स्थिति है। अब विचार करके देखो ये सारा कार्य जीव करेगा या देह करेगा, विचार करके देखो। और ये जो कार्य होगा ये आंतरिक होगा या बाहरी होगा? अर्जुन के अंदर चेंज बाहरी आई थी या आंतरिक आई थी? सारा ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन ने एक ही बात कही कृष्ण से, मुझको स्मृति प्राप्त हो गई, स्मृति लब्ध, मुझको स्मृति प्राप्त हो गई। तो स्मृति प्राप्त हो गई तो क्या करा? उसने कृष्ण के आगे समर्पण कर दिया, अब आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। तो स्मृति क्या प्राप्त हो गई? एक ही प्राप्त हो गई कि मैं करता नहीं। कृष्ण का संग करके उसको ये स्थिति प्राप्त हो गई कि मैं करता नहीं हूं, और इसीलिए उसने निष्काम युद्ध किया। उसका जो महाभारत था वो निष्काम युद्ध था, एक योगी का युद्ध था, एक योगी युद्ध कर रहा है। जैसे मोहम्मद साहब युद्ध कर रहे हैं तो मोहम्मद साहब खुद निष्काम योगी, उस स्थिति में वो युद्ध कर रहे हैं। तो इसलिए चाहे वो युद्ध करें, हजार आदमियों को मार दें, उनको कर्म का बंधन नहीं है, उनके लिए वो कर्म का फल भी नहीं है, क्योंकि वो देह है ही नहीं। क्योंकि वो देह है ही नहीं। एक धनुष बाण से आप 100 पक्षियों की हत्या कर दो, 100 आदमियों का वध कर दो, तो धनुष बाण को कोई पाप लगता है क्या? यदि कोई कहे धनुष बाण को पाप लगेगा तो वो कैसे मूर्ख हो जाए? ये तो जड़ वस्तु है, ये तो जड़ पदार्थ है, जड़ पदार्थ को पाप लगता है क्या? तो मैं कैसे भूल जाता हूं कि ये देह जड़ पदार्थ? बार बार हम संदर्भ लास्ट में शास्त्रों में पढ़ते हैं कि ये सारी जो सृष्टि है ये 5 तत्व से बनी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और पांचों ये पदार्थ जड़ है नहीं, या इसमें चेतना है और देह भी ये पांच पदार्थ से बनी, पांच तत्वों से बनी, तो ये देह जड़ है या नहीं। इसलिए माझ कह रहे हैं प्रेमी, देह और संसार एक ही चीज है, एक ही मेटेरियल है दोनों। देखो ना, ये संसार इस देह को खा जाता नहीं, खा जाता है, और ये संसार बनती भी संसार, ये देह बनती भी संसार से ही, इसी मेटर से बनती, ये जितनी भी पलती है संसारी मेटेरियल से तो पलती है ना। तो ये देह संसार दोनों ही जड़ पदार्थ हैं। मेरे अंदर चेतना, मैं जानता हूं, मुझे मालूम है कि मेरे अंदर कॉन्शियसनेस है, अच्छी तरह जानता हूं। तो जानने वाली शक्ति है इस देह के अंदर, उसका नाम है जीव, मैं वो हूं। अब बताओ ये हूं मैं चेतन और जड़ बन के घूम रहा हूं संसार में, इसीलिए अच्छे कर्म करते हुए भी मुझसे बेतहाशा गलतियां हो रही, बेतहाशा गलतियां हो रही, अनगिनत पाप हो रहे हैं मुझसे अच्छे कर्म करते हुए भी। बुरे लोग तो आप जानते ही हो, सारे पाप ही करते हैं, लेकिन मैं अच्छा इंसान हूं तब भी मुझसे पाप हो रहे हैं, इसका मुझे बोध नहीं है। इसलिए जो इंसान भी ईश्वर की तरफ गंभीरता से नहीं चल रहा है वो शास्त्रों की दृष्टि में पापी ही है। चाहे हम एक दूसरे की कितनी भी तारीफ कर लें, तुम बड़े अच्छे आदमी हो, तुम ये करते हो वो करते हो, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे तो मैं पापी ही। क्यों? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कर्तापन मूल पाप है, जहां से सारे पाप उदय होते हैं। इस पाप का स्रोत कर्तापन है और यहां से सब सारे पाप उदय। अब बताइए मेरा ज्ञान कितना गहरा है, कितना गहरा है? आप सिमरन करने बैठते हो, एक ही शिकायत करते हो, मेरी इच्छा है, मैं जानता हूं सिमरन का कितना महत्व है, मैं करना चाहता हूं, फिर मन मुझे करने ही नहीं देता। क्यों नहीं करने देता? कि मन के अंदर बार बार हजारों तरह के संकल्प उठते रहते हैं। तो मन के अंदर जो संकल्प उठ रहे हैं ये आपके संस्कारों के कारण उठ रहे हैं। जो संस्कार आपने बना लिए थे पास्ट में, चाहे वो वर्तमान जन्म में कर्म हो आपसे, चाहे पूर्व जन्मों में कर्म हो, हर कर्म अपना इंप्रेशन तो मन पे छोड़ जाता है, नहीं छोड़ जाता है, उसको संस्कार कहते हैं। यदि आप अपने आप को देह ना समझो, उस स्थिति में स्थित हो जाओ, तब आपके कर्म संस्कार नहीं बनेंगे। जब तक आप अपने आप को कर्ता समझ रहे हो, देह समझ रहे हो, वो कर्म के संस्कार आपके मन में बनेंगे और इन संस्कारों के कारण ही आपका स्वभाव में भी परिवर्तन आएगा। इसलिए महाराज कहते हैं प्रेमी, मनुष्य अपना स्वभाव आप बदल भी सकता है। एक तमोगुणी जीव सतोगुणी बनकर शरीर का त्याग कर सकता है, यह उसकी प्रोग्रेस है। प्रारब्ध नहीं बदल सकता, संस्कारों का निर्माण आप कर भी सकता है। मुझसे एक गलती हो जाए तो लोग देखा नहीं है, जानकर गलती करते हैं, गलती करके खुश होते हैं। जैसे किसी से रिश्वत ले ली, मैंने गलती है ना, ये सारा समाज जानता है कि रिश्वत लेना पाप है। जो रिश्वत लेता है कई बार देखिए कितना खुश होता है, आज कमाई बढ़िया हो रही, खुश होता है ना। घर में बाल बच्चों को भी कहता है आज इतनी कमाई हुई, वो भी बड़े खुश होते हैं। तो अब बताइए, गलती करके भी मैं खुश हो रहा हूं, ये क्या है? ये संस्कारित हूं आपको, ये क्या है? ये तमोगुणी संस्कार है, ये तमोगुणी पाप, जो साफ साफ सारा समाज जानता है ये गलत कर्म है, मैं भी जानता हूं लेकिन फिर भी करके खुश हो रहा हूं, इसका मतलब मेरे संस्कार तमोगुणी है। तो इस तमोगुण से मुक्त होने के लिए, अपने स्वभाव में परिवर्तन के लिए ही तो महाराज जी ने 5 पॉइंट प्रोग्राम दिया उनको, ये जो सादगी सत्य सेवा सत्संग सत्सिमरन की बात हम करते हैं, तो ये 5 पॉइंट प्रोग्राम क्या है? ये अपने संस्कारों को बदलने का मेथड है। क्योंकि ईश्वर भक्ति तो हमसे तब हो पाएगी जब हमारा जो स्वभाव है, हमारे जो संस्कार है वो सत्वगुणी बनेंगे, तभी तो ईश्वर भक्ति हो पाएगी। तमोगुणी संस्कार लेके आपके अंदर ईश्वर भक्ति हो सकती है क्या? इसलिए महाजी कहते थे, प्रेमी पहले अपना दैनिक जीवन शुद्ध करो, जो साफ साफ आप जानते हो और पूरी सोसाइटी भी जानती है कि ये गलत है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी जानता है, आपका सारा सामाजिक स्ट्रक्चर भी जानता है, प्रजा भी जानती है, सरकार भी जानती है क्या गलत है, ओपनली गलत है। कुछ बारीक चीजें होती है वो अध्यात्म पढ़ने के बाद समझ में आती है, लेकिन मोटी मोटी बातें सभी जानते हैं। लेकिन आप जानते हो कि लोग जानकर इस संसार में एक दूसरे का शोषण करते हैं, जानकर, ये तमोगुण है। और भेंट करने चला हूं मैं ईश्वर से, तो भाई स्वभाव में परिवर्तन तो आना चाहिए ना। तमोगुण से रजोगुण में आता है। तमोगुण से रजोगुण कैसे आता है? जैसे मान लिया आज मैं किसी को लूट के खा जाता हूं, ये तमोगुण है। जब मुझे कुछ समझ आती है ये काम गलत है, या भय के कारण मैं काम छोड़ता हूं तो मेहनत करके कमाता हूं, तो ये रजोगुण। फिर और जब शुद्धि करता हूं, जब शास्त्र पढ़ता हूं, सत्संग श्रवण करता हूं, तब गुरु की बात आ जाती है। गुरु कैसे कमाने को कह रहा है? वो कह रहा है कि समय सीमा बांध कर स्वार्थ का भी जीवन व्यतीत कर और परमार्थ का जीवन भी व्यतीत कर। फिर मैं अपनी कमाई में एक लिमिट बांधता हूं, इतने घंटे में पैसा कमाऊंगा, इसके बाद ईश्वर भजन करूंगा, निष्काम सेवा करूंगा, शास्त्र का स्वाध्याय करूंगा, अर्थात सत्कर्म में मैं टाइम खर्च करूंगा। तो एक ही कमाई का साधन है आपका, कैसे कैसे धीरे परिवर्तन आ रहा है गुरु के अनुसार चल रहे हैं। और कमाई भी करूंगा, उसमें से 10% मेरा नहीं, वो दीन दुखियों का। मेरे पास तो 2 वक्त की रोटी है, लेकिन ऐसे दीन दुखी भी हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं, तो उस 10% उनका अधिकार है। मैंने उस पैसे को किसी पात्र पर खर्च करना है। तो यही कमाई जो पहले तमोगुणी थी, पहले रजोगुणी हुई, फिर ये कमाई आपके सतोगुण में आ गई। ईमानदारी से कमाई की गई हो, समय सीमा के अंदर मर्यादा में की गई हो, उसमें से भी 10% आपने निष्काम सेवा के लिए निकाल दिया हो, तो ये कमाई आपकी सतोगुणी हो। ये तो एक एक्टिविटी है, लाखों करोड़ एक्टिविटीज हमसे होती है, तो हर एक्टिविटी हमारी ऐसे ही चेंज होती है। हमारा खान पान चेंज हो जाता है, पहले मीट अंडे खाया करते थे, फिर शाकाहारी पे आ गए तो वहां भी बड़े मसाले वाले तले भुने मर्यादा से ज्यादा खा रहे हैं, बेटाइम खा रहे हैं, कोई सिवाय नहीं, वो रजोगुण पे आ गए। फिर आप सादी रोटी पे आ गए, सादे आहार पे आ गए। ईश्वर भजन करना है, खाना उसमें बाधक ना बने, वो ध्यान में रख के खा रहे हैं आप, ऐसा खा रहे हैं महाज कहते प्रेमी जो शक्ति बनी रहे लेकिन जल्दी हजम हो जाए। तो वही आहार है, क्योंकि आहार तमोगुण से सतोगुण पे आ गया, नहीं आ गया। इस प्रकार से मेरी बातचीत, लोगों के साथ व्यवहार, हर चीज बदल जाती है। तो जैसे जैसे आपके में ये सतोगुण बढ़ेगा, वैसे ही वैसे आप देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि पहले कितनी बेचैनी बनी रहती थी, अब कितनी चैन से जिंदगी बीत रही है। लोगों से बड़ी आशाएं करता था, अब आशा नहीं करता। कि जब प्रभु ने मेरी लीला रची है, सुख दुख बनना बिगड़ना उसके आज्ञा से आएंगे, तो मैं लोगों से आशा क्यों करूं? लोगों से आशा रखना अध्यात्म दृष्टि से, ये मूर्खता है। अरे मेरे साथ जो होना है वो होके ही रहेगा, तो मैं किसी से अपेक्षा क्यों रखूंगी? ये अज्ञानता की निशानी है। तो इसीलिए यदि आपके मन में ये प्रश्न आता है, इसका मतलब हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हो, इतना कर सकते हो कि आज आप राक्षस हो और आने वाले वक्त में आप ईश्वर बन सकते हो, आप इतना कर सकते हो। तो वो करना यही है कि मैंने अपने ही स्वभाव के चंगुल से, अपने ही संस्कार के चंगुल से, अपने ही मन के चंगुल से मैंने मुक्त होना, ये आप कर सकते हैं। ये सारी की सारी आंतरिक क्रिया है, देह के अंदर की क्रिया है। देह का अंदर प्रारब्ध के अधीन नहीं है, देह का बाहर प्रारब्ध के अधीन। मन में आप हजार चीजें सोच सकते हो, लेकिन कर्म में जो हो गई वो प्रारब्ध के अधीन है। मन में जो सोची गई वो प्रारब्ध के अधीन नहीं है। तो सोचने में आप स्वतंत्र हो, तो इसलिए आप चाहे संसार का स्मरण करो, चाहे करतार का स्मरण करो, स्वतंत्र हो। तो ये वो पुरुषार्थ है जिसकी बात शास्त्र कर रहे हैं। सत संपत के कारणे जतन करो दिन रात, मंगत बसेरा दो घड़ी उठ चलना प्रभात। रात दिन मैंने सत संपत्ति अर्जित करने के लिए मैंने पुरुषार्थ करना था, और मैं क्या कर रहा हूं पुरुषार्थ देख लो। सेवा भी करता हूं तो अहंकार के साथ, बेचैनी के साथ। सेवा में भी कुछ कहीं परेशानी हो गई तो वहां भी परेशान होता हूं, मैंने सेवा करने चला यहां भी परेशानी खड़ी हुई। क्यों परेशानी खड़ी हुई है? क्योंकि अंदर से मैं करने वाला हूं ये भाव तेरे अंदर स्ट्रांग बना हुआ है। इसीलिए यदि तेरे अंदर ये विवेक होता, जो समता विलास जो अन्य शास्त्र हमको प्रदान कर रहे हैं, ये विवेक मेरे अंदर कायम रहता तो मैं बेचैन नहीं होता। प्रभु परायण होकर कर्म करता हूं कि प्रभु आपने जैसा मार्गदर्शन किया है, या यूं कहते हैं कि जैसा गुरु ने मार्गदर्शन किया है, गुरुदेव मैं तो उसी के अनुसार पूरी दिल से कोशिश कर रहा हूं, जितनी बुद्धि आपने दे रखी है। फिर भी गलतियां हो रही हैं तो आप मेरी बुद्धि को शुद्ध करो। वो गुरु से प्रार्थना करता है, करने का अहंकार नहीं करता। गुरुदेव आपने जो करवाना था करवा दिया, चाहे प्रभु ने जो करवाना था या गुरुदेव ने करवाना था, हम कहने मुंह से कुछ भी कह रहे हैं, बात एक ही बात एक। तो वो होश में रह के कर्म करता है कि मैं नहीं करने वाला हूं, मैं गुरु आज्ञा पालन करने की मात्र कोशिश कर रहा हूं। जैसे अर्जुन ने कहा कृष्ण से कि अब आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा, यही तो बात है। यदि आपके अंदर ये भाव आ जाए तो दफ्तर में बैठ के आप रिश्वत लोगे क्या? विचार करके तो ये संभव होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए यहां आके पता लगता है, यदि आपने महाराज जी की प्रारंभिक बात को ही नहीं माना तो 15 वर्ष की आयु से लेकर 30 वर्ष की आयु तक कम से कम 1 घंटा सुबह 1 घंटा सायकाल सिमरन करना लाजमी है। लाजमी का मतलब होता है कंपलसरी, कंपलसरी का मतलब है नो चॉइस। यदि आप सब कुछ जानने के पश्चात भी यही कहते हो नहीं साहब अभी तो 1 घंटा ही काफी है, तो इसका मतलब हो गया आप जानकर शैतान बने रहना चाहते हो। इंटेंशनली आप शैतानी करते रहना चाहते हो, इसकी छूट चाहते हो। क्योंकि मनुष्य के दो ही कर्म होते हैं, या तो उत्थान के या पतन के। ये जो है तो रुकता नहीं, जितना निरंतर ईश्वर की तरफ बढ़ेगा ये उसका उत्थान है, और जितना निरंतर ईश्वर से दूर जाएगा ये उसका पतन है। और दुनिया में उत्थान पतन कोई नहीं होता। मेरे प्रमोशन हो गया, उत्थान हो गया, मेरा बिजनेस ठप हो गया, पतन हो गया, ये उत्थान पतन नहीं है। इसको गुरु, इसको ईश्वर उत्थान पतन की दृष्टि से नहीं देखता। मेरी मानसिक हालत क्या है उसको उत्थान पतन की दृष्टि से देखता है। ये तो जड़ पदार्थ है ना, इसके क्या, इसका इसमें क्या उत्थान क्या पतन। देह आपकी सुंदर बन गई या बसुरत बन गई, इसमें क्या उत्थान क्या पतन, ये तो जड़ वस्तु। तो इसीलिए यदि मैं गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार या शास्त्रों के मार्गदर्शन के अनुसार अपने निश्चय को नहीं बदलता और उसके अनुसार मैं अपनी जीवन पद्धति निर्धारित नहीं करता, तो फिर ये बात मेरे ऊपर सीधी सीधी लागू होती है जो महाराज जी की वाणी कह रही है, बिना विवेक मानुष जो होई पशु समान जीवन सुख होई। तो मेरी जो सारी करनी है चाहे वो अच्छी है या बुरी है, दोनों ही पशु के समान है, इसका मानव जीवन में दूर दूर तक कोई महत्व नहीं। मानव जीवन में यदि किसी करने का महत्व है तो एक ही करने का महत्व है, वो है मनुष्य कैसे धीरे धीरे निष्कामता की ओर बढ़ रहा है, या यूं कहें कैसे धीरे धीरे वो अंतर्यामी ईश्वर की ओर बढ़ रहा है, कैसे धीरे धीरे वो देह से मोह भंग होने की ओर बढ़ रहा है। अब आप विचार करिए, बिना सिमरन के आपका गुजारा हो सकता है? जो मैंने बनना है, जिसने मुझको बनाना है, उसकी याद करने की फुर्सत ही जब मुझे नहीं है तो क्या मैं बनूंगा और क्या वो मुझे बनाए। तो ऐसी संसार में बिगड़े घोड़े की तरह मैं घूमता रहूंगा और अपने ऊपर टाइटल्स लगाता रहूंगा, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, करते। इसलिए बिना ईश्वर भक्ति के सांसारिक जीवन ये मानव जन्म की बर्बादी है, इसके अलावा ये कुछ नहीं। तो प्रारब्ध, संस्कार, स्वभाव, इनकी बातें शास्त्र में इसलिए की जाती हैं। तो स्वभाव की बात की जाती है, वो कहते हैं सारी प्रकृति तीन प्रकार के स्वभाव के अधीन है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तूने सतोगुणी बनना है, सतोगुणी बनने के लिए सारा ये क्षमता विलास है। और सतोगुणी वही बन सकता है जिसको ईश्वर का होश है, कि अंदर ईश्वर मौजूद है और वो इस देह का मालिक है। उस प्रभु ने ये देह रूपी इंस्ट्रूमेंट, ये देह रूपी यंत्र मुझको उस ईश्वर प्राप्ति के लिए दिया है, अंतर्यामी ईश्वर से भेंट करने के लिए दिया है। उस लक्ष्य लेकर जब मैं चलता हूं, वो होश मेरे अंदर बना रहता है और वो कैसे प्राप्त करूंगा, उसके लिए वो समता विलास का अध्ययन करता है, शास्त्र का अध्ययन करता है, सत्संग का श्रवण करता है। तो इस तरह का जो सिंसियर व्यक्ति है उसको कहना चाहिए वो प्रेमी है, बाकी प्रेमी नहीं है, बाकी तो साधारण मनुष्य। प्रेमी वही है जिसने इस लक्ष्य का निर्धारण किया है जीवन में और इसके पति वो सिंसियर है। तो उसके लिए फिर ये विज्ञान बड़ा कीमती है, क्या है प्रारब्ध, क्या है कर्म, क्या है स्वभाव, क्या है संस्कार, ये सारी बातें उसको जानना ही चाहिए शास्त्र के आधार पर, ताकि वो ठीक सोचे, ठीक करे और ठीक मंजिल प्राप्त। ओम।